20 अगस्त दिन सोमवार दिन भर मैं हूं रेहान फदर। केरल में युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी। बात करेंगे बाढ़ के शिकार कुछ लोगों से।
मेरा घर में तो मेरा बाप था, मेरा माँ था, मेरा सिस्टर, दो बच्चा था, एक बच्चा मिल गया, उसको तो प्रॉब्लम नहीं है। दोनों बच्चा मर गया था, बाप भी मरा, माँ भी मरा, मेरा सिस्टर भी मरा।
जकार्ता एशियाई खेलों में भारत को दूसरा स्वर्ण पदक। विनीत फोगाट ने महिला कुश्ती में जापानी पहलवान को हराया।
मेरा गोल्ड का लक्ष्य था, मेरा 3 या 4 बार एशिया में सिल्वर आ चुका है। भगवान मेरे साथ था, मेहनत मैंने कर रखी थी, सब चीज मिक्स हो गई तो आज ये गोल्ड मिल गया।
सुनिएगा अपने पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। केरल में भारी बारिश और बाढ़ से खराब हुई स्थिति में अब सुधार हो रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग अफसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा ने आज संवाददाताओं से कहा कि बचाव का शुरुआती काम लगभग पूरा कर लिया गया है और अब राहत प्रदान करने और पुनर्वास के कामों में तेजी लाई गई है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री इमरान खान को खत लिखकर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली इस्लामाबाद के साथ सार्थक वचनबद्धता की ओर देख रहा है। मोदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंधों को लेकर प्रतिबद्ध है। इमरान खान ने शनिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय में बोलते हुए नए विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने का एकमात्र तरीका बातचीत है।
और हिंदुस्तान की वजीर खारजा से मैं ये कहना चाहूंगा कि हम दो न सिर्फ हमसाए हैं, हम दो एटमी कुवते हैं। हमारे दरीना मसाइल हैं, उन वसाइल से आप भी वाकिफ हैं और मैं भी वाकफियत रखता हूं। हमारे पास मेरी राय में गुफ्त शुनीद के अलावा कोई और हल नहीं है।
ये थे पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के शब्द। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने सभी रोमन कैथोलिकों को बच्चों के साथ पादरियों के व्यवस्थित यौन उत्पीड़न को लेकर खेद प्रकट किया है। अमरीकी प्रांत पेंसिल्वेनिया में 300 से अधिक पादरियों पर 70 साल के दौरान हजारों बच्चों के उत्पीड़न का आरोप है। पोप ने कहा कि चर्च ने अपने बच्चों के साथ बुरा आचरण किया है और उसे इसकी रोकथाम के लिए दूसरे कदम उठाने थे। वेटिकन अधिकारी ने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पोप ने दुनिया के 2 अरब कैथोलिकों को यौन उत्पीड़न को लेकर पत्र लिखा है। दो देशों के बीच बेहतर होते रिश्तों के दौरान दक्षिण कोरिया के 89 परिवारों ने उत्तर कोरिया में अपने परिजनों से मुलाकात की है। कईयों ने 60 साल पहले हुए कोरिया युद्ध के बाद से अपने परिवार को नहीं देखा था, जिसके बाद उनको परिवार वालों को पहचानने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 85 वर्षीय महिला ने अपने 92 साल के भाई से कहा कि वो उसे फिर से देखने के लिए जीवित थी। तकरीबन 70 वर्षीय दो बहनें जब 99 साल की अपनी माँ से मिली तो बोल पाने में असमर्थ थीं, तो वो रोने लगीं। ये परिवार अगले 3 दिनों तक 11 घंटों का आनंद लेंगे, इसके बाद वे फिर से जुदा हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वित्तीय मामलों के यूरोपीय कमिश्नर ने कहा है कि अंतिम बेलआउट कार्यक्रम से बाहर होने के बाद ग्रीस यूरोजोन में अब सामान्य देश हो चुका है। पियर मोस्कोविसी ने कहा कि ये एक बदलाव के दौर में था जिसने टिकाऊ वसूली के लिए आधार रखा। 3 साल के यूरोपियन बेलआउट से 70 अरब डॉलर आए, जिसने ग्रीस को यूरो मुद्रा नहीं छोड़ने में मदद की। मोस्कोविसी ने कहा कि 8 सालों के दौरान ग्रीस के लोगों ने कठिन समय देखा है और वित्तीय मामलों के फैसलों को लेकर ग्रीस में अब खुद की क्षमता है।
I'm confident that Greece can now focus on building a new future with measures.
मुझे विश्वास है कि ग्रीस अब नए भविष्य बनाने की ओर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिसमें नौकरी पैदा करने और सतत वृद्धि के उपाय होंगे। मैं जानता हूं कि 8 सालों के ज्ञापन के बाद अब ग्रीस के लोग सामान्यता का एहसास कर रहे हैं। ये थे वित्तीय मामलों के यूरोपीय कमिश्नर के शब्द। स्पेन के कैटलोनिया क्षेत्र में बार्सिलोना के एक पुलिस स्टेशन के बाहर हमले को पुलिस आतंकी हरकत मानकर कार्रवाई कर रही है। अधिकारी ने एक शख्स को गोली मारी जो एक बड़ा चाकू लेकर इमारत में घुस रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पुलिस प्रवक्ता ने पुष्टि करते हुए कहा कि हमलावर ईश्वर बहुत बड़ा है कह रहा था। चार्ड में मोबाइल फोन्स में मैसेजिंग एप्लीकेशन और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को वकीलों ने अदालत में चेतावनी दी है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए। ریحان فضل کا۔ کیرل اس سمے صدی کی سب سے بھیانک باڑھ کا سامنا کر رہا ہے۔ سینا اور ارسینک بل راحت اور بچاؤ کاریہ میں لگے ہوئے ہیں۔ کیرل میں اب تک اس بھیشن باڑھ میں 357 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ راحت اور بچاؤ کاریہ یدھ استر پر جاری ہے۔ کیندر سرکار نے 600 کروڑ روپے کی مدد کی گھوشنا کی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے راجیہ بھی کیرل کے لیے مدد کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی سلمان راوی تریچور ضلع کے کوراچیری پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں باڑھ سے 19 لوگ مارے گئے تھے۔ سلمان نے وہاں کے کچھ باڑھ پیڑتوں سے بات کی ہے۔
میں اس وقت تریچور کے کوراچیری کے علاقے میں ہوں جہاں سب سے زیادہ تباہی اور نقصان کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو۔ کئی گھر یہاں تباہ ہو گئے، کئی پریوار یہاں پر زمین کے نیچے ملبے کے نیچے دب گئے، اور 19 لوگ کل ملا کر یہاں ان کی موتیں ہوئی ہیں، جس میں سے کل ایک دیر شام میں شو کو نکالا گیا۔ اور میرے پیچھے کرین لگی ہوئی ہیں، مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور بالکل سمتل کیا جا رہا ہے کیونکہ مکان سب ٹوٹے پڑے ہیں۔ بہت سارے ستھانیہ لوگ ہیں میرے ساتھ، اور ان میں سے ایک ہیں مسقط میں کام کرنے والے۔ آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام سجے ہے۔
تو آپ مسقط سے پھر یہ خبر ملنے کے بعد آئے؟
خبر ملنے کے بعد میں کالیکٹ ایئرپورٹ میں آ گیا، اس کے بعد ادھر آ گیا۔
یہ دکھائیے مجھے گھر کہاں تھا آپ کا؟ اب تو سب
میرا گھر تو ادھر تھا،
وہ سامنے جو پیڑ نظر آ رہا ہے
ادھر ہی ہے
جہاں پہ یہ مشین جے پی سی چل رہی ہے،
ادھر ہی چل رہا ہے، ادھر ہی تھا میرا گھر تھا۔ وہ پورا ابھی گیا، ابھی پہاڑ نیچے آ گیا، اس کی وجہ سے پورا نکل گیا۔
کون کون تھے گھر میں؟
وہ میرا گھر میں تو میرا باپ تھا، میرا ماں تھا، میرا سسٹر، 2 بچہ تھا، 1 بچہ مل گیا، اس کو تو پرابلم نہیں ہے، دونوں بچہ مر گیا تھا، باپ بھی مرا، ماں بھی مرا، میرا سسٹر بھی مرا۔ اس کے بازو میں بھی میرا جنسن، اس کا نام ہے، وہ بھی اس کا گھر بھی تھا، اس کا گھر کا 3 بچہ بھی مرا، اس کا وائف بھی مرا جنسن، اس کا ماں بھی تھا، باپ بھی تھا، وہ بھی مر گیا۔
تو اب آپ لوٹ کر اب کیا کریں گے؟ آپ کا تو گھر اب رہا ہی نہیں ہے۔
نہیں، ابھی کیا کریں؟
آپ کی یادیں تھیں اس گھر سے جڑی ہوئی؟
ابھی ادھر دیکھتے، میرے کو معلوم بھی نہیں پڑتے کدھر کدھر کا جگہ ہے، وہ بھی معلوم نہیں پڑتے، ایسا ہو گیا، پورا نکل گیا۔
آپ اس وقت موجود تھے رات میں جس وقت یہ گھٹنا گھٹی؟ آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام کٹن تھا۔
تو بتائیے ذرا کہ کیا ہوا؟ کیا تھا؟
صبح 6:30 بجے میں ہم لوگ، میرے بیوی چائے بنانے لگنے اندر گیا تھا، کچن میں تھا، وہ تو بہت آواز سے مٹی اور بہت آواز آ رہا تھا،
پتھر
جھاڑ اور مٹی کا آواز آ رہا تھا۔ ہم لوگ، میں جو بولا بچوں لوگ اور بیوی کو بولا، بھاگو کر کے بولا، وہ لوگ جلدی بھاگ کے نیچے روڈ پہ آیا تو دیکھ رہا تھا پورا مٹی ادھر بھر گیا، پورا مٹی اور جھاڑ ادھر بھر گیا تھا۔ 2 منٹ کا اندر وہ مٹی اتنے دور سے ادھر آ کے بھر گیا تھا۔ میں ادھر سے دیکھ رہا تھا، اے بھائی کا اس کا گھر ٹوٹ گیا تھا، جنسر کا گھر بالکل نہیں تھا ادھر، جگہ ایک گھر گیا کر کے معلوم نہیں پڑا تھا۔ اس کے باجو میں سجی کا ایک گھر ایسا والا تھا، وہ سجی کا ایک گھر بھی ٹوٹ گیا تھا۔ سجی کا ایک بچہ میرے کو آ کے بولا، میرے پتا جی کا پیر میں دیوار گر گیا، میں جا کے دیکھا تو اس کا پیر میں ایک دیوار کھڑا ہے، میرے کو کچھ بچانے کے لیے کچھ راستہ نہیں تھا، میں اکیلا تھا، 2-3-4 جن جگہ آیا تو تبھی بھی میرے کو کر نہیں پایا۔
اب کیا کریں گے آپ؟
میرا نام سجو ہے۔
سجو سجو کیا کریں گے اب، کیونکہ گھر تو اب رہا نہیں، آپ کا سامان امان بھی تو مجھے نہیں لگتا
کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو ادھر دیکھتے کچھ بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ابھی کیا کرے گا معلوم نہیں پڑتا، ابھی ادھر تو پورا کالی مٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ابھی گھر کدھر ہے وہ بھی نہیں نظر نہیں
آ رہا۔ باڈیز نکلی تھی، آپ دیکھے ان کو؟
میں تو بعد میں آیا تھا، یہ ادھر کا آدمی لوگ پورا ہیلپ کیا تھا، میرا سسٹر کا ایک بچہ تو زندہ میں ملا۔
اچھا،
ادھر کا
وہ بچہ
ابھی میرا سسٹر کے گھر میں،
دوسرے سسٹر
اس کو وہ شوق میں، ابھی کیا اس کو
ٹراما میں ہے،
ایسا ابھی ہے۔
ایسا تو آپ لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی کہ؟
تو سوچا نہیں ایسا، میں میرا پتا جی کا انداز میں بھی ایسا نہیں ہے، اتنا سال میرے کو۔
آپ کے گھر میں آپ کی نقصان ہوا؟
میرا گھر میں نہیں نقصان ہوا، میرے باجو کے گھر میں، باجو کے گھر میں ایسا ہے۔
کتنے گھر تھے یہ سب ملا کر؟
ادھر 5 گھر ہے، سب 5 گھر،
5 گھر،
5 گھر تھے، 5 گھر کا نقصان ہو گیا۔ ادھر کم سے کم 40 گھر ہوئے گا، ادھر ایک باجو میں 40 گھر،
5 گھر پوری طرح
پورے قدر خلاص ہو گیا۔
اور یہ جو آخری جو لاش ملی، یہ کب ملی؟ کل رات
کو 5:30 بجے۔
तो अब ये फिर से दोबारा से घरों को बनाने का सिलसिला कुछ शुरू हो रहा है कि नहीं?
अभी अभी सर्वे हो रहे हैं, क्या 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 नुकसान हो गया, क्या किसको किसको नुकसान
हुआ। जो घर है ये भी
कैसे तो मेरा दोस्त का घर है।
वो कहाँ गए लोग?
कुंड में पड़ा है सब लोग, 43 आदमी लोग कैंप में। कैंप में
लिखी गया भी नजर आ रही है पूरी दबी हुई। यहाँ तक मलबा आ गया था। ये नदी है क्या है?
रेल है, ट्रेन का
रास्ता था ये साइड में।
वो पूरा उधर तक आ गया, इतना कम से कम 1.5 किलोमीटर तक ऐसा इतना मिट्टी आ गया था उधर से ऊपर से।
वो बाजू में रोड था ना, उस बाजू में पार्किंग किया तो वही बाइक के इधर आके पड़ा है।
वो वहाँ से बहकर यहाँ आके गिरी।
हाँ, उधर जंक्शन करके एक पूरा गया वो आदमी का ऑटो रिक्शा इधर आके पड़ा है। वो लोग किचन का सामान पूरा इधर था, उसका गैस का वगैरह सब किचन का सामान,
लाश भी सब आगे बह गया था।
उधर का लाश पूरा इधर आया था।
ये तो करीब करीब 40-50 फीट कितना ज्यादा ही होगा, ये तो
100 मीटर
होगा,
100 मीटर के ऊपर होगा,
100-200 मीटर ऊपर। तो सुना आपने कि कैसे यहाँ तबाही मची जब बारिश आई और आखिरी जो लाश बरामद हुई वो कल शाम में बरामद की गई। अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है, खुदाई की जा रही है और समतल किया जा रहा है इलाकों को, क्योंकि कई घर मिट्टी के मलबे के अंदर दबे हुए हैं। वहां से सामान निकालने के लिए जिनके घर के परिजन बाकी बचे हैं जो बाहर से आए हैं यहाँ पर घटना के बाद, वो इस इंतज़ार में है कि कुछ तो मिल जाए इनको जो निशानी कम से कम यहाँ से वो उठा सकें। सलमान रावी, BBC, त्रिशूर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
बिहार में शुक्रवार को मॉब लिंचिंग की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हुए महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर संजय कुमार बेहतर इलाज के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बीच एक तरफ मोतिहारी स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ बिहार सरकार में भारतीय जनता पार्टी कोटे से मंत्री प्रमोद कुमार ने दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आलोचना करने के कारण संजय कुमार को राष्ट्र विरोधी करार दिया है। सुनिए पटना से मनीषा नीले की रिपोर्ट।
प्रोफेसर संजय कुमार बेहतर इलाज के लिए रविवार शाम फ्लाइट से पटना से दिल्ली पहुंचे। इसके पहले शुक्रवार की रात वे बेहतर इलाज के लिए ही मोतिहारी से पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी PMCH आए थे। पटना में संजय के भाई रवि प्रकाश भी उनकी देखरेख करने वालों में से एक थे। उन्होंने संजय को दिल्ली ले जाने की यह वजह बताई।
ट्रीटमेंट के लिए एम्स दिल्ली चले गए हैं और अभी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, नाजुक भी कहा जा सकता है। हम लोग यहाँ से उनका उनके ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे हम लोग।
हालांकि PMCH प्रबंधन ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि परिजनों और दोस्तों के दबाव में संजय को दिल्ली रेफर किया गया है। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर से रविवार को जारी एक आदेश में विश्वविद्यालय को 20 अगस्त से अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की बात कही गई है। आदेश के मुताबिक विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। दूसरी ओर बिहार सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री प्रमोद कुमार ने दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आलोचना करने के कारण संजय कुमार को राष्ट्र विरोधी बताया है। गौरतलब है कि संजय कुमार का कहना है कि उनके द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की आलोचना का बहाना बनाकर ही उन पर हमला किया गया था, क्योंकि वे अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरविंद कुमार अग्रवाल के कथित भ्रष्टाचार और उनकी फर्जी डिग्री को उजागर कर रहे हैं। मंत्री प्रमोद कुमार ने साथ ही संजय कुमार का समर्थन कर रहे लोगों को अलगाववादी भी करार दिया है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद भी संजय कुमार के समर्थन में सामने आई है। इस आरोप पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे का कहना है कि ऐसा आरोप लगाकर मंत्री RSS की नीति और एजेंडा को लागू कर रहे हैं। पूर्वे कहते हैं,
कहीं न कहीं संजय पर यह हमला नहीं है बल्कि यह लोकतंत्र पर और संविधान पर हमला है। संसदीय लोकतंत्र का मतलब है मत विभिन्नता। अब ये RSS भाजपा जो है असहमति को टॉलरेट नहीं कर सकता है, मतलब कि RSS भाजपा से अलग सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद पर अपना विचार व्यक्त करता है, अपना वक्तव्य देता है, उस पर इसी ढंग का हमला हो रहा है। जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो RSS भाजपा के हाथ कर दिया गया है।
राजद के शिक्षक प्रकोष्ठ द्वारा आज विश्वविद्यालय में संजय कुमार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर धरना भी दिया गया। मनीष चांदिल्य, BBC पटना।
मशहूर विज्ञानवादी, डॉक्टर, लेखक और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र डाभोलकर की आज पांचवी बरसी है। 5 साल पहले आज ही के दिन पुणे में उनकी अज्ञात हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके विरोध में आज कई जगहों पर जवाब दो रैली का आयोजन हुआ। संजय रमाकांत तिवारी की रिपोर्ट।
पुणे में आज डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की स्मृति में जवाब दो रैली का आयोजन किया गया। ये रैली विट्ठल रामजी शिंदे पुलिया, लक्ष्मी रोड, साने गुरुजी मेमोरियल आदि प्रमुख इलाकों से गुजरी। इस दौरान डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के बेटे डॉक्टर हमीद दाभोलकर, बेटी मुक्ता दाभोलकर और मेधा पानसरे आदि प्रमुखता से उपस्थित रहे। इस आयोजन के बारे में मुक्ता दाभोलकर ने बताया,
पिछले 5 सालों से हम ये आंदोलन कर रहे हैं। हर साल अगस्त की 20 तारीख को हम इकट्ठा होते हैं, सिर्फ पुणे में ही नहीं तो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की महाराष्ट्र में जहाँ कहाँ शाखाएं हैं, 300 जगह में शाखाएं हैं, उन शाखाओं में से बहुत से स्थानों पर हम इकट्ठा होते हैं कार्यकर्ता, और ये जवाब आंदोलन छेड़ा है। यानी 5 साल हो गए डॉक्टर दाभोलकर का कत्ल होके, तो अभी 2 दिन पहले एक गिरफ्तारी हुई है, उसके पहले 2.5 साल पहले गिरफ्तारी हुई थी, पर पूरा प्लॉट बाहर लाना, मास्टरमाइंड तक पहुंचना, ये कुछ नहीं हो पाया है अभी।
इस अवसर पर महाराष्ट्र के कई स्थानों पर धरना आंदोलन, निर्भय मॉर्निंग वॉक जैसे आयोजन हुए और जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम निवेदन सौंपे गए। इन आयोजनों के पीछे की भूमिका कुछ यूं बताई मुक्ता दाभोलकर ने।
एक आंदोलन है जिस आंदोलन के जरिए हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्यों नहीं हुआ है, और ये एक अपना खुद का आत्मबल बढ़ाने का और खुद को एक साथ होना महसूस करने का भी तरीका है। तो ये आंदोलन छेड़ते हैं और ये पूरा विवेकी तरीके से, अहिंसक तरीके से चलता है। ड्रामा होता है, पोएट्री होती है और भाषण होते हैं। आज तुषार गांधी, महात्मा गांधी जी के ग्रेट ग्रैंडसन, वो हमारे बीच आए थे, उन्होंने अपना मत रखा व्यर्थ न हो बलिदान विषय पे, और उसके बाद रावसाहेब कसबे, एक मराठी के जाने माने थिंकर है, उन्होंने भी अपना मत रखा।
उधर दिल्ली में भी रैली का आयोजन किया गया और धरना आंदोलन हुआ, जिसके बारे में बता रहे हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के पदाधिकारी माधव बावगे, जो महाराष्ट्र के लातूर से दिल्ली पहुंचे हैं।
6 लोगों की टीम दिल्ली में आ गई है। दिल्ली में हम एक जंतर मंतर पे एक धरना कर रहे हैं, उसके पहले मंडी हाउस से जंतर मंतर तक एक प्रोटेस्ट रैली निकल रही है, उसमें मेधा पाटकर के साथ बहुत सारे 150-200 लोग शामिल हो रहे हैं, और इसमें प्रोटेस्ट रैली निकलेगी और जंतर मंतर पे उसका समापन होगा। वहाँ कुछ कार्यकर्ता उसके बारे में बातचीत करेंगे, और इसके बारे में नेशनल साइंटिफिक टेम्पर डे के ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क ने शुरू किया है, उसकी शुरुआत परसों इधर दिल्ली में हो गई, और फिर आज ये धरना आंदोलन और निषेध रैली निकली हुई है।
हाल ही में महाराष्ट्र में हुई गिरफ्तारियों के बाद अदालत के सामने जांच एजेंसियां डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की गुत्थी सुलझा लेने का दावा कर रही हैं और षड्यंत्रकारियों के बारे में शपथ पत्र दे चुकी है, लिहाजा इस केस पर अब निगाहें टिकी हुई हैं। संजय रमाकांत तिवारी, BBC।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। आज सोमवार है और आज के दिन आपको इंतजार रहता है अपने पत्रों का।
आपकी राय, नमस्कार स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और साथ में हैं ज्योतिका सिंह।
श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार।
तो ज्योतिका, बहुत सारी ईमेल्स आपके पास हैं, मेरे पास कुछ चिट्ठियां हैं, तो मिलजुल के पढ़ लेते हैं।
बिल्कुल, मैं ईमेल से शुरुआत करती हूँ। बहादुरगंज किशनगंज बिहार से गौतम दत्ता लिखते हैं कि सलमान रावी जटिल परिस्थितियों के भी केरल में आई भीषण बाढ़ का रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हमें वहां आई कठिनाइयों का विवरण भेज रहे हैं।
बिल्कुल, ये बात सही है, तो हमारी कोशिश यही है कि वहां की जो असली तस्वीर है वो अपने श्रोताओं तक पहुंचाई जाए।
जी, अगला ईमेल है रफीक इब्राहिम परकार का, लिखते हैं रत्नागिरी महाराष्ट्र से कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर पेश किए गए सारे रिपोर्ट बहुत ही पसंद आए। बुधवार की आदर्श राठौड़ द्वारा प्रस्तुत तुर्की के आर्थिक स्थिति पर दुनिया जहान भी ज्ञानवर्धक और उपयोगी कार्यक्रम था। केरल में विनाशकारी बाढ़ की तबाही की आंखों देखी खबरों को आपने प्रमुखता दी और वहां से सलमान रावी और दूसरे संवाददाताओं की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी लगी।
बहुत बहुत धन्यवाद रफीक इब्राहिम साहब। हमारे संवाददाता, जैसे कि आप जानते हैं कि जहां जहां खबरें होती हैं वहां वहां हमारे संवाददाता जाते हैं।
भूपेंद्र लिखते हैं, मैं तो बचपन से बीबीसी का श्रोता हूँ, आज मेरी उम्र 56 है, पहले रेडियो पर था, अब टीवी, रेडियो, मोबाइल, बहुत सारे चुनाव है। आप जो समाचार में फोटो देते हैं वहां उसके बारे में कुछ लिख दें तो समझने में आसानी होगी।
अच्छा, कई बार ये गलती हो जाती है कि तस्वीरों में किसकी तस्वीर है ये लिखना हम लोग भूल जाते हैं, तो क्षमा कीजिएगा, अगली बार से कोशिश करेंगे कि इस तरह की गलतियां नहीं हो। लेकिन ज्योतिका जी, आप ध्यान दीजिए, ये पत्र पहला और आखिरी है।
ओके।
ये धमकी मैं नहीं दे रहा हूँ, हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने एक छोटे से कागज की चिट पे ये चिट्ठी लिखी है। मदन सिंह रावत इनका नाम है, श्रीनगर गढ़वाल से इन्होंने लिखा है, उत्तराखंड से, और बहुत जल्दबाजी में लिखा है। सबसे ऊपर यही हेडलाइन दिया है कि ये पत्र पहला और आखिरी है। लिखते हैं कि बीबीसी को 1960 से सुन रहा हूं, परंतु पत्र न लिख सका। और ये कहते हैं कि मेरी नौकरी की पहली पे जब मुझे मिली थी तो मैंने रेडियो खरीदा था, तब से आज तक चाहे कुछ भी हो अवश्य सुनता हूं, और कहीं भी जाता हूं तो ट्रांजिस्टर साथ में रहता है और लोग मुझे बीबीसी कहते हैं। देखिए साहब, मदन सिंह रावत जी, आप इतने दिनों तक थे कहाँ, इतने पुराने श्रोता हैं, बीबीसी के नाम से आपको जाना जाता है वो आपके इलाके में, तो आपको तो अगर कभी दिल्ली आए तो हमारे दफ्तर आना चाहिए और थोड़ा सा और विस्तार से चिट्ठी लिखते तो अच्छा रहे। एक और चिट्ठी मेरे पास है जिसे लिखा है आदर्श नगर हल्द्वानी उत्तराखंड से प्रताप सिंह। दरअसल इतनी जल्दबाजी में इन्होंने भी लिखा है कि इनकी लेख बहुत समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये लिखते हैं कि 5 अगस्त के प्रसारण में चरमोली जनपद के जिस चाई नामक गांव का उल्लेख आपने किया उसे मैं प्रत्यक्ष देख चुका हूं। वहां बद्रीनाथ यात्रा के दौरान मैं वहां पर तैनात था, ड्यूटी पर था। दरअसल ये लिख ये रहे हैं कि इस गांव में विस्फोटों के कारण पहाड़ खोखले हो गए हैं, सुरंगें बना दी गई हैं, और विकास के ये जो काम हैं इनकी वजह से पहाड़ कच्चे हो रहे हैं। इस पर इन्होंने हमें चिट्ठी लिखी है, मुझे लगता है कि पहली बार इन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रताप सिंह जी ने। अगली बार थोड़ा सा ठहर के लिखिएगा ताकि हम आपकी पूरी बात प्रसारित कर सकें।
इलाहाबाद से अनिल शुक्ला लिखते हैं कि भारत पाक संबंध सामान्य करने की दिशा में अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका पर वसतुल्लाह खान का ब्लॉग बहुत पसंद आया। शुक्ला जी ने मानसी दास के प्रस्तुतिकरण की तारीफ की है, पर उन्हें इस बात पर एतराज है कि इंडिया बोल में अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना नरेंद्र मोदी और अमित शाह से करने की कोशिश की गई, जो बहुत स्पष्ट हो गया।
अच्छा, तो अनिल शुक्ला जी, आप तो जानते ही हैं, पुराने श्रोता हैं, हम कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिससे हम अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को अलग रखना चाहते हों, इसलिए चाहे वो अभी मौजूदा प्रधानमंत्री हों उनसे अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना हो, या वाजपेयी से नरेंद्र मोदी क्या सीख सकते हैं, यही बताने का मकसद हमारे इंडिया बोल का था। इसमें बहुत ज़्यादा बहुत कोई ऐसा नहीं था कि कोई खास तौर पर हम कोई हिडन एजेंडा लेके चल रहे हैं।
अगला ईमेल है सुरेश अग्रवाल उड़ीसा से, लिखते हैं कि
ये केसिंगा के रहने वाले हैं क्योंकि बहुत पुराने श्रोता हैं, हमें लगातार चिट्ठी लिखते हैं, इस बीच थोड़ा चिट्ठी लिखना कम कर दिया इन्होंने।
ये लिखते हैं कि सन 1979 में जब अटल जी विदेश मंत्री थे, उस समय बीबीसी के लंदन स्टूडियो में कैलाश बुधवार द्वारा उनसे लिया गया साक्षात्कार में मुख्य अंश सुनकर पुरानी यादें एक बार फिर ताजा हो उठी, क्योंकि ये पूरा साक्षात्कार मैंने 39 वर्ष पहले तब भी सुना था जब ये पहली बार बीबीसी के साप्ताहिक इनसे मिलिए के तहत प्रसारित किया गया।
देखिए, मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ कि इतना पुराना एसोसिएशन किसी श्रोता का किसी मीडिया हाउस से अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगता नहीं है कि मुझे कि ऐसा कोई श्रोता होगा जो इतने सालों से हमें सुन रहा हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी के मृत्यु पर हमने उसको फिर से प्रसारित किया था। फिलहाल समय कम है तो इजाजत चाहते हैं। चलते चलते पता नोट कीजिएगा, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। ईमेल लिखना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
जकार्ता में हो रहे 18वें एशियाई खेलों में भारत की विनीश फोगाट ने महिला कुश्ती के 50 किलो वर्ग में भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया है। उधर शूटिंग में भी भारत को 2 रजत पदक मिले हैं। थोड़ी देर पहले मैंने जकार्ता गए खेल पत्रकार अमनप्रीत सिंह से बात की और उनसे पूछा कि विनीश ने किस तरह से ये स्वर्ण पदक जीता।
ये तो आज ऐतिहासिक जीत है विनेश फोगाट के लिए, क्योंकि किसी भी भारतीय महिला पहलवान ने आज तक एशियाड में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल नहीं जीता है, तो पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है, बहुत गर्व की बात है उनके लिए। और जिस तरह से जो खास बात थी कि उन्होंने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को इतनी आसानी से हराया वो देखने लायक था। सबसे मुश्किल मुकाबला लग रहा था कि जिस जैपनीज रेसलर के साथ उनका फाइनल मुकाबला होना था वही उनकी सबसे मुश्किल प्रतिद्वंदी थी, लेकिन उनको भी उन्होंने इस तरह बांधे रखा कि वो देखने वाला नजारा था। उन्होंने पिन डाउन किया पहले राउंड में, पहले पीरियड में जो कि 3 मिनट का होता है, 4-0 की लीड बढ़ाई, फिर उन्होंने एक दो पॉइंट खोए, लेकिन वो पूरी तरह से कंट्रोल में थी, उनके नियंत्रण में थी पूरी फाइनल की बाउट। और जिस तरह से उन्होंने इस बाउट को एंड किया पिन करके अपने प्रतिद्वंदी को, और उसके बाद जो दर्शकों का उत्साह था उनकी जीत को लेकर के वो देखने लायक था। ऐतिहासिक जीत बहुत बड़ी बात है भारतीय कुश्ती के लिए भी, क्योंकि एशियाड में भारतीय पुरुष पहलवानों के भी बहुत ज्यादा मेडल नहीं है। कल बजरंग ने जीता, उनसे पहले योगेश्वर दत्त का मेडल था, और उसके पहले मुश्किल से 4-5 मेडल हैं गोल्ड मेडल एशियाड में, तो ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय कुश्ती के लिए।
मेरा गोल्ड का लक्ष्य था, मेरा 3 या 4 बार एशिया में सिल्वर आ चुका है, भगवान मेरे साथ था, मेहनत मैंने कर रखी थी, सब चीज मिक्स हो गई तो आज ये गोल्ड मिल गया। 2014 में जब मेरा कॉमनवेल्थ में गोल्ड आया था, उन्होंने बोला था कि भगवान जो भी करता अच्छा करता है, अगर कभी मेडल नहीं आए तो कभी निराश मत होना, क्योंकि वो क्या पता आपके लिए कुछ बेटर सोच रहा है। बस वो चीज है जो मुझे हमेशा याद रहती है कि भगवान ने कुछ अच्छा ही सोच रखा हुआ मेरे लिए। देखिए अपोनेंट है तो हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन ऑब्वियसली प्रेशर था, 3 बार मैच हुए, 3 बार वो जीती है, तो मेरे ऊपर ये था कि आज मुझे खुद को प्रूव करना है।
अमनप्रीत, शूटिंग में भी भारत को 2 रजत पदक मिले हैं, वहां से कैसा प्रदर्शन रहा शूटिंग में?
शूटिंग में हमेशा ही भारत का प्रदर्शन अच्छा रहता है, कल भी हमारा एक मिक्स में आया मेडल ब्रॉन्ज और आज 2 सिल्वर आए हैं। दीपक कुमार का मेडल है, दिल्ली के शूटर हैं, 10 मीटर एयर राइफल में उनका सिल्वर मेडल रहा, 247.7 ये उनका फाइनल स्कोर रहा। जबकि जो चाइना के जो खिलाड़ी थे जिन्होंने गोल्ड जीता है, वो डिफेंडिंग चैंपियन थे, उनका स्कोर काफी अच्छा था, 249.1। और जो हमारा दूसरा सिल्वर मेडल आया, ये हमारा मेडल है 19 साल के हैं केवल लक्ष्य, और ये उन्होंने पुरुषों की ट्रैक प्रतिस्पर्धा में जीता, फाइनल तक पहुंचे, उनका फाइनल स्कोर 39 था 45 में से। और जिनका गोल्ड था वो ताइपेई के शूटर हैं कुम्पी यांग, और उन्होंने गेम्स रिकॉर्ड बनाया है उनके 48 पॉइंट्स।
अमनप्रीत, लेकिन कबड्डी में बहुत बड़ी अपसेट हुई है, भारत अभी तक सारे मुकाबले जीतता आया है लेकिन कोरिया से आज हार गया।
ये बहुत अचंभे वाली बात है, क्योंकि जब से एशियन गेम्स शुरू हुए हैं 1990 से कभी भी भारत कोई मैच हारा ही नहीं है, गोल्ड तो जीते ही हैं साथ के साथ, लेकिन कभी कोई मैच हारा ही नहीं है, तो ये बहुत अचंभे वाली बात थी। 23-24 एक पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस था हार में और जीत में, लेकिन भारतीय टीम अच्छी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा वो वापस आएंगे, रिकवर कर लेंगे और फिर से 8वें गोल्ड की तैयारी में रहेंगे।
ये थे जकार्ता से अमनप्रीत सिंह। उधर इंग्लैंड के खिलाफ 3rd टेस्ट में भारत की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। हमारे साथी ज्योतिका सिंह मैच पर नजर रखे हुए हैं, बताइए क्या है ताजा स्कोर?
जी, भारत और इंग्लैंड के बीच नॉटिंगहम में 3rd टेस्ट मैच खेला जा रहा है। ये मैच नॉटिंगहम के ट्रेंट ब्रिज में हो रहा है। पहले 2 टेस्ट में हार झेलने के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले करो या मरो के 3rd टेस्ट में फतह हासिल कर वापसी करने के लिए बेताब है। नॉटिंगहम में हो रहे भारत के ये टेस्ट मैच सीरीज बचाने का अंतिम मौका है। टीम का पहला 2 टेस्ट मैचों में एस्बेस्टन में 31 रन और लॉर्ड्स में पारी और 159 रन से हार मुंह की हार हुई उनकी। और अब 3रे मैच में पहली पारी में भारत ने बनाए हैं 329 रन। और भारत काफ़ी ज़ोरदार टीम है और पहले 2 बार झटके खाने के बाद अब वो पकड़ बनाते नजर आ रहे हैं। इस बारे में बता रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली।
काफी सारी चीजें हैं, एक तो कॉम्बिनेशन ठीक इनको समझ में आ गया, जैसे पहले टेस्ट में गलत 11 चुना था, सेकंड टेस्ट में गलत 11 चुना, इस बार उन्होंने इनको समझ में आ गया कि आपको मीडियम पेसेस पे ही अपने डिपेंड करना पड़ेगा। आपके पास अब पांड्या ठीक है विकेट ले गए हैं, पर अगर आप देखें क्रूशियल झटके तो ईशांत शर्मा ने दिए हैं। और आप बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि पहला मैच कोई भी जीत सकता था, दूसरे मैच में सबको मालूम है कि सबसे कठिन हालात में भारत को बल्लेबाजी करनी पड़ी थी। यहाँ पे फिर आप देखिए रहाणे ने रन किए बड़े क्रूशियल, विराट ने, और वहां से जो रिकवरी हुई है उसको बॉलर्स ने पकड़ा।
और इंडिया अभी 432 रन से आगे चल रही है,
तो देखना है कैसा करती है। उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन करेगी भारतीय टीम। और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार केरल में भारी बारिश और बाढ़ से खराब हुई स्थिति में अब सुधार हो रहा है। वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा ने संवाददाताओं से कहा है कि बचाव का शुरुआती काम लगभग पूरा कर लिया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री इमरान खान को खत लिखकर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली इस्लामाबाद के साथ सार्थक वचनबद्धता की ओर देख रहा है। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने सभी रोमन कैथोलिकों के बच्चों के साथ पादरियों के व्यवस्थित यौन उत्पीड़न को लेकर खेद प्रकट किया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।